देकर अन्य गुरु प्रवर ब्रह्मचारी चारसुभृत देकर ओम विष्णवे स्वाहा मंत्र से अग्नि के उत्तर अंश पूर्वाग्रह घृत धारा प्रदान करे। ओम अनंताय स्वाहा मंत्र से अग्नि के दक्षिण भाग में गुप्त प्रकाश से घृत धारा दे। अतः पर भृगु गोत्र भार्गव प्रवर ब्रह्मचारी जुहू में एक सू और चरु में एक सू घृत देकर के उस स्थान से लेखन द्वारा मैंने हाथा होता है लेखन के द्वारा कलछी के द्वारा अन्न बैठक में अवदान ग्रहण कर जुहु में स्थापन करे और चरु के अवदान स्थान में भी एक सूअ घृत डाल दे। तत्पश्चात चरु के पूर्व भाग में एक सूअ घृत देकर उस स्थान से कलछी के द्वारा अन्न अवदान कर उसे जहु में स्थापन के अनंतर के अवदान स्थान में एक सुगृहित दे डाल दे। पुनः चरु के पश्चिम भाग में इसी प्रकार एक सुगृहित देकर उस स्थान से अन्न अवदान कर जुहू में स्थापन पूर्वक चरु के अवदान स्थान में एक सुअ घृत डाले। तत्पश्चात जुहू में समस्त अन्न के ऊपर एक सुअ घृत देकर ओम विष्णवे सवित्रे स्वाहा मंत्र अग्नि में हवन करे होम करे। ब्रह्मचारी अन्य गोत्र प्रवर होने पर चरु के पश्चिम भाग में अवदान न करे किंतु जुहू में एक सू घृत देकर रखे हुए चारु में पश्चिम भाग छोड़कर पूर्व प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कर जुहुस्त चरु के ऊपर जुहू में रखे जुहू चरु के ऊपर एक
And then it'll be recorded as
well. All recording.
Well, I think so. But, yeah, but, you know.
You tried, yeah. All the conference.
Everybody's speaking something. And what could it happen? And you tried it.
The voice not stopping.
Ishan Kaur ne, bracket me, ek suwa ghrit dekar, kalchi ke dwara, स्थान से कंस अन्न उठाकर जुहू में स्थापन करे। जुहू मैंने क्या जू और हू में दीर्घ जू में हर्ष हू में दीर्घ किंतु अवदान चरु के अवदान स्थान में और पश्चात जुहुस्त चरु के ऊपर दो सुर घृत देकर अग्नि के पूर्वोत्तर भाग में ओम स्वस्ति कृते अच्युताय स्वाहा मंत्र से होम करे। अन्नव प्रवर होने पर युहु में पहले एक श्लोक हित दे, समस्त कार्य एक ही प्रकार एक बार। नंतर कलछी को अग्नि अमंत्रक होम कर, महाबृहति होम कर, अमंत्रक प्रदेश प्रमाण समेत निक्षेप कर, प्रकृत कर्म समापन पूर्वक सर्व कर्म साधारण सत्यायन होम आदि वाम दिव्यकानांत उद्दीच्य कर्म शेष करे एवं आचार्य को दक्षिणा दे। पिता ही आचार्य होने पर कर्म कराने वाले पंचरात्रिक वैष्णवों को दीक्षा प्रदान करे। इति सावित्री स्वरूपम पद समावर्तन। आचार्य की आज्ञा से अधीत वेद मानव प्रकृति में ब्रह्मचारी का समावर्तन कर्तव्य है। समावर्तन के दिन पिता स्नान के अनंतर विष्णु पूजा और सात्विक वृद्धि श्राद्ध कर अथवा वृद्धि श्राद्ध करने के पश्चात पिता के द्वारा वृत अन्न आचार्य अथवा ब्रह्मचारी के द्वारा वृत अन्न आचार्य तेजो नाम नमक अग्नि स्थापन पूर्वक विरूपाक्ष जपान कुशुंडिका समाप्त कर मानव को ब्रह्मचारी को अपने दक्षिण में बैठा कर प्रकृत कार्य के आरंभ में प्रदेश प्रमाण धृताप्त समिध अमंत्र पूर्व मुख से होकर बैठे। तत्पश्चात ब्रह्मचारी ही जौ उरद मूंग आदि औषधि सहित और चंदन आदि द्वारा सुवासित पात्र स्थित शीत उष्ण मिश्रित जल में जल से अपनी अंजलि को पूर्ण कर आचार्य के आदेश से मूलोक्त एक संख्यक मंत्र से तो जलांजलि भूमि में छोड़ दे। उन्हें इसी प्रकार जल से अंजलि पूर्ण कर मूलोक्त दो मंत्र के द्वारा उसे भूमि पर छोड़ दे। पता पर ब्रह्मचारी आचार्य के आदेश से उस जल को अपनी अंजलि में पूर्ण कर मूल में कहे गए तीन संख्यक मंत्र से अपने को अभिषिक्त करे। पुनः इसी प्रकार अंजलि पूर्ण करके मूलोक्त चार संख्यक मंत्र से अपने को अभिषिक्त करे। पुनः पांच संख्यक मंत्र के द्वारा मंत्र से अपने को पूर्वोक्त अभिषिक्त करे। अतः और एक बार बिना मंत्र के इसी प्रकार अंजलि द्वारा अपने को अभिषिक्त करे। अनंत ब्रह्मचारी पूर्व की ओर मुख कर खड़े होकर श्री नारायण विग्रह दर्शन पूर्वक मूलोक्त छ नौ संख्यक चार मंत्रों पर उपासना करें। तत्पश्चात ब्रह्मचारी मूलोक्त दस संख्यक मंत्र में मंत्र से मेखला को मेखला को नीचे की तरफ से निकाल ले। पश्चात आचार्य एलिया पलाश दंड अग्नि में निक्षेप कर महाबृहति होम कर प्रादेश प्रमाण गीता तो समीप अमंत्रक होम कर प्रकृत कर्म समापन पूर्वक सर्व कर्म साधारण सत्यायन आदि वाम दिव्य ज्ञान गणांत उद्दिच्य कर्म शेष करें। अतपर ब्रह्मचारी कृष्ण भक्त कृष्ण ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन कर शिखा व्यतीत केश दाढ़ी लोम नख कटाकर स्नान करें। वस्त्र और चादर
यह स्वयं भगवान सुजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के श्री कृष्ण का मधुरतम प्रेम रस का श्री कृष्ण के परम मधुरतम प्रेम रस का छटकता हुआ अगाध और अनंत सागर है। इसलिए अप्राकृतिक रसिक अनुभाव भक्तजन इसमें सदा सर्वदा अवगाहन करते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा अनुपम ग्रंथ बस यह एक ही है, इसकी कहीं भी तुलना नहीं। इसमें पद पद पर परमहंस मेकलम अमलम ज्ञानम परम गीयते लौकिक विद्या बुद्धि से रहित से अति मुक्त परमहंसों के विशुद्ध परम ज्ञान का गान किया गया है। श्रीमद् भाग एक ही साथ साहित्य दर्पण साहित्य दर्शन इतिहास खगोल परमहंस संहिता इन रस का लबालब भरा हुआ अप्राकृत ग्रंथ है। इसमें ज्ञान विराट भक्ति सहित निष्कर्म का आविष्कार हुआ है। यह एकमात्र रसिक और भाव सज्जनों के ही संवेद्य आस्वादनीय है। विद्या की तो यह अवधि है, विद्या भगवता अवधि। इस उक्ति से ऐसा विदित होता है कि श्रीमद् भागवत के अनुशीलन में ही सारी विद्याओं का पर्यवसान है। श्रील जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में भागवत की महिमा बतलाते हुए कहा है, ये सदा सर्वदा यह भागवत श्रीमद् भागवत सदा सर्वदा सबके सिद्ध है। यह असाधुओं को साधु और अत्यंत नीच व्यक्तियों को भी परमोच्च बनाने वाले हैं। श्रीमद् व्यास जी ने वेदों का विभाग कर समस्त पुराणों को प्रकाश कर ब्रह्मसूत्र का प्रणयन कर जब परितुष्ट रहे तब नारद जी की कृपा और उनके उपदेश से स्वरचित स्वकृत ब्रह्मसूत्र की अपकर्तन ब्रह्मसूत्र का अपकर्तन भाष्य के रूप में इसे समाधि योग में प्राप्त कर अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए। इसलिए इस ग्रंथ को समाधि लब्ध ग्रंथ भी कहते हैं। इन्होंने जीवों के कल्याण के लिए ही इस पुराण रूपी सूर्य का को जगत में अवतरण कराया। इस ग्रंथ में द्वादश स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग विसर्ग आदि महापुराणों के 10 प्रकार के लक्षणों से यह समन्वित है। भारतीय धर्मशास्त्र ज्ञान कर्म और भक्ति के अवलंबन से ग्रथित व्याख्यात हुए हैं। इसके भी मूल में वेद का आधार है। वेदांत का वैशिष्ट यह है वेदांत का वैशिष्ट तत्व और ज्ञान में है। गीता का वैशिष्ट कर्म में कर्म ज्ञान और भक्ति में और श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट विशुद्ध रूप में प्रेमा भक्ति के तत्व प्रकाशन में है। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में गीता का उपदेश है तथा युद्ध के अंत में श्रीमद् भागवत प्रकाशित हुए हैं। भक्ति विचार से जहाँ गीता का की परिसमाप्ति है श्रीमद् भागवत का वहीं से प्रारंभ है। सत्यम परम धीमहि के द्वारा श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हुआ है। यशमत भागवत ग्रंथ यशमत भागवत ऐसा परम कारुणिक और महाबदान्य होने पर भी अभक्त विद्वान मंडली के लिए मोहनकारी तथा भगवत विमुख जड़ी जड़िया बुद्धि विशिष्ट व्यक्तियों शास्त्र आदि अध्ययन कर अपने विद्या के जड़ विद्या के गर्भ में गर्भित प्राकृत ज्ञान और जड़ विज्ञान के एक कण लाभ कर अपने को विद्वान होने का अभिमान करने वाले व्यक्तियों को निकट महादुर्बोध महादुर्गम है अथच शरणागत सेवनमुख व्यक्तियों के निकट सहज वत्सल परम कारुणिक निगुण तात्पर्य प्रकाशक हैं। इसलिए प्राचीन तत्वविदों ने श्रीमद् भागवत के संबंध में ऐसा लिखा है सुको
सुको
व्यक्ति
अहम वेदमी
अहम वेदमी सुको व्यक्ति
व्यासो व्यासो व्यक्ति
न व्यक्ति वा
भक्ता भागवतम ग्राह्यम
भक्ता भागवतम ग्राह्यम
न बुद्धा न चया
न च
टीकया
टीकया कुछ आधुनिक आधुनिक तार्किक जन श्रीमद् भागवत का अनुशीलन न कर अच्छी तरह नहीं कर करने के कारण श्रीमद् भागवत में नाना प्रकार के तर्क उपस्थित करते हैं यह वैष्णव के निकट पढ़ने से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से ऐसे तर्कों की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वे कहते हैं पहले तो वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जिस तरह का की भाषा आधुनिक भाषा का प्रयोग किया गया है उससे श्री व्यासदेव की रचित या नहीं जान पड़ता, व्यासदेव द्वारा प्रकाशित या नहीं जान पड़ता, या किसी बोध देव नामक किसी व्यक्ति के द्वारा यह रचित है। किंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि बोध देव के बहुत पहले ही आविर्भूत
भागवत हनुमत भाष्य वासना भाष्य
टीका की रकम कर ले बोलना
हनुमत भाष्य
हनुमत और वासना भाष्य भक्तों के बहुत पहले ही किए जा सकते किए गए हैं। शंकराचार्य के गुरु श्री गुरु परम गुरु गौड़पाद ने भी अपने ग्रंथों में श्रीमद् भागवत के लीलाओं का वर्णन किया है और उसमें श्रीमद् भागवत का उल्लेख हुआ है। यह कैसे संभव है? भागवत देव पैराग्राफ दूसरा श्रीमद् भागवत वेद कल्प वृक्ष की अष्टि और बलकल आदि हे से रहित सचिदानंद रसघन पक्का फल है। श्री कृष्ण से श्री ब्रह्मा नारद व्यास शिशु आदि महत्वगणों के श्रीमुख पद्म से निकलकर अखंड भाव से जगत में अवतीर्ण है एवं अपराकृत लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर ध्यान लीला के पश्चात भगवान के ही श्री नंदनंदन के द्वितीय विग्रह एवं अचिंता परम चमत्कार ली शब्द अच्छा विग्रह के रूप में ये कलयुग में अहत की कृपा बस परवश होकर अवतीर्ण हुए। अतएव स्वयं रूप तत्व श्री कृष्ण की भांति ग्रंथावतार श्रीमद् भागवत भी स्वयं रूप ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत सभी निगम और आगमों के सार हैं। महापुराणों के में सर्वोत्तम अमल पुराण, शाश्वत तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ परमहंसी संहिता, यह एक ही साथ गायत्री का भाष्य, गायत्री का भाष्य, ब्रह्मसूत्र का भाष्य, श्रीमद् महाभारत का तात्पर्य और वेदार्थ का विस्तार करने वाले ग्रंथ है। भागवत की साथ कल्पतरु है, उसके रस में फल भी हैं और मालाकार भी है, इसीलिए शास्त्रों में शिरोमणि के रूप में प्रतिष्ठित है। कुछ लोग श्रीमद् भागवत को मैथोलॉजी, उपन्यास और किस्सा कहानी की पुस्तक समझते हैं और इसमें तरह तरह के असामंजस्य प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में कहीं भी या पुराणों में कहीं भी असंगति नहीं है। यदि गूढ़ रूप से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से समस्त प्रकार के तर्क दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में सार्वकालिक, सार्वदेशिक,
सार्वजनिक
समस्त प्रकार की समस्याओं का संधान समाधान विद्यमान है। कुछ लोग पुराणों की श्रीमद् भागवत की भाषा को लक्ष्य कर इसको आधुनिक ग्रंथ मानते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत एक नित्य नवीन ग्रंथ है। व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा नहीं, बल्कि समाधि में इस ग्रंथ को अपने समाधि में अपने हृदय पटल पर इसको दर्शन किया, इसलिए ये श्रीमद् भागवत के रचयिता नहीं बल्कि प्रकाशक हैं। ग्रंथ या ग्रंथ नित्य कृष्ण की भांति ही नित्य और नवीन है। भागवत में भगवान बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की का वर्णन किया गया। भगवान ने जीव कल्याण के लिए अपने लीलाओं का अवतरण लीलाओं की अवतारणा की है। भगवान रसिक शेखर हैं, साथ ही साथ वो परम करुण है। रसिक शेखर के कारण वे रसों का प्रेम रस का निर्जास आस्वादन करने के लिए तथा जगत जीवों में रगानुगा भक्ति मार्ग का प्रचलन करने के लिए कि वो जगत में अवतीर्ण होते हैं। उनकी लीलाएं ऐश्वर्य एंड माधुर्य उन दो रूपों में है। श्री राम चंद्र आदि भगवत अवतार जो कृष्ण से निकले हैं वे ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त हैं। ब्रज में श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी विशुद्ध प्रेम परक लीलाओं की अवतारणा कराई है। माधुर्य रस में उन्होंने अपनी नर लीला को प्रकाशित किया है, इसलिए साधारण मनुष्य उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाते। ऐश्वर्य परक लीलाओं में जहाँ मैं एक खुद दो जीव हूँ और कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ऐसी प्रीति में ऐसी प्रीति के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत में जसोदा द्वारा दामबंधन लीला छोटे बच्चे होकर के भी उतना इत्यादि का बल आदि सब लीलाएं हैं। श्री विश्वनाथ चक्र श्री सनातन गोस्वामी श्री जी गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीकाओं में ऐसी ऐसी शंकाओं का बहुत सुंदर रूप से समाधान किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहीं भी कोई असंगति नहीं है, केवल समझने का फेर है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आधुनिक विश्व में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाशेश्वर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य दीक्षित शिष्य तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाशेश्वर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज संन्यास प्राप्त नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाशेश्वर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिनको पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद कहा जाता है, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथों का अनुवाद कर उसे पाश्चात्य देश में विपुल रूप से प्रचार किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत के एक से लेकर 9 स्कंदों का अनुवाद किया, किंतु दुर्भाग्यवशतः 10वें स्कंद आरंभ करने के पहले ही वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, इसलिए 10वें स्कंद पर वो व्याख्या नहीं लिख सके। उनके शिष्यों ने इसके लिए प्रयास किया है। वर्तमान
बाकी बड़े
बलराम स्वामी
कृष्ण बलराम स्वामी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका श्रीमद् भागवत का प्रथम खंड मेरे हाथों में है। मैं अधिक विद्वान नहीं, विशेषकर अंग्रेजी का विद्वान नहीं, इसलिए ग्रंथ को संपूर्ण रूप से देख नहीं सका, किंतु इनके प्रयास बहुत ही स्तुत्य है। मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं श्रीमद् भागवत, अपने गुरु पाठ पत्नी कलीदा परिश्रम विष्णु पाशिषण भक्ति प्रज्ञान के सब दुष्पन्न कलीदा परिश्रम विष्णु पाशिषण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्रयास में सफल। अलम इति विस्तार इस व्याख्या में इन्होंने जहाँ तक हो सका है अपनी व्याख्या में श्री सनातन एवं जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषिणी तथा चक्रवर्ती ठाकुर सनातन दर्शनी टीकाओं के अनुसरण करने की चेष्टा की। इसलिए साधक विद्वत मंडली इस ग्रंथ से अवश्य ही उपकृत हो।
हरे कृष्ण कृष्ण।